बोले राधा माधव हो गया, राधा माधव हो गया। हरे कृष्णा, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारे, जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा बनचारे, जमुना तीरा बनचारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
विष्णुपाद परमहंस परिब्राजाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमाधवे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कह जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी देव की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। दुर्गा महामस्त की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज़ असेंबल्ड डिवोटीज़ all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrutya Naram chaiva narottamam Devim sarasvatim vyasam Tato jayo mudhiraye नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम कंद 9 अध्याय 16। आज हम श्लोक संख्या 18 और 19 पर चर्चा करेंगे। एक लिखा हूँ, काल तक 9वां श्लोक तक चर्चा हुई थी, आज 10 से लेकर के 19वां श्लोक तक जाएंगे। पहले मैं 10 से 17 श्लोक तक में स्वयं आवृत्ति और उसके अनुवाद पाठ करूंगा और साथ में हम 18 और 19 नंबर श्लोक हम आवृत्ति करेंगे। एकदाश्रमतो रामे सभ्रातरी वनं गते वैरं पिशाचै समं लब्धच्छिद्रं उपागमन। काल तक एक प्रश्न था कि परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञाओं को पालन करते हुए अपने माँ और भाइयों की सिर छेदन की। तो इस कार्य में जब जमदग्नि संतुष्ट हो गए तो अपने पुत्र से जिज्ञासा की, वर मांगने के लिए आग्रह किए, तो उनकी पिताजी ने उनके आग्रह पर उनको तथास्तु कह करके वरदान दिए कि वो मांगे थे कि हमारी माँ और भाइयों को पता न चले कि मैं उनको संहार किया था और उनको प्राणदान दे दीजिए। और जब जमदग्नि ने इस प्रकार कहा है तो उनकी पुत्र और पत्नी ने तुरंत जग गए जैसे कोई निद्रा से जग गया हो। तो काल के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि चाहे जमदग्नि हो व परशुराम हो व कार्तवीर्य अर्जुन हो, तो सबको अपने अपने कर्म के फल भुगतना पड़ता है। जमदग्नि ने अपने पत्नी के प्रति अपराध करने के कारण उनका भी सिर छेद हुआ और फिर परशुराम इस कार्य करने के कारण कि उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन को मारे, राजा को मारने के कारण उनको भी थोड़ा सा अपराध लगा और कार्तवीर्य अर्जुन जमदग्नि के प्रति अपराध करने के कारण और उनकी पुत्र ने भी अपराध करने के कारण उनको भी कर्म की दोष लगा। तो ये कथा को कहने के बाद एक बार राम अस्त्रमतः सभ्रातरी बनंगते अपने भाइयों के साथ जंगल गए थे। बैरम सिसाधई सबं लब्ध छिद्रं उपागमन। जिस समय वो बन गए थे कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि के प्रति शत्रुभाव रख करके उसकी बदला लेने के लिए उनके आश्रम पर आए। दृष्ट्वा अग्नि आगरहम आसीनं आबे शीतं ध्यान मुनि। जब आश्रम के पास आकर के देखे कि मुनि जमदग्नि ने अग्निहोत्र यज्ञ करके समाधि में स्थित है। धियम मुनि भगवती उत्तम श्लोके जघ्नुस्ते पाप निश्चय। परंतु ये कार्तवीर्य अर्जुन की पुत्र जो पाप निश्चय पाप करने के लिए वो दृढ़ संकल्प कर चुके थे कि हमको पाप ही करना है। किस प्रकार पाप? न जघ्नु हत्या करने के पाप, किसको? न जमदग्नि, जो भगवती उत्तम लोक के धियम जिन्होंने अग्निहोत्र करके एकाग्र भाव से भगवान उत्तम श्लोक के चिंतन में मग्न थे उनको हत्या करने के लिए ये लोग निश्चय कर लिए थे। तो ये घटना को सुखदेव गोस्वामी आगे पीछे बोल रहे हैं। जब देखे कि वो आंख बंद करके ध्यानस्थ हैं, तो कार्तवीर्य अर्जुन की कितनी पुत्र थे, कितनी पुत्र, सौ पुत्र, उनके कितने हाथ था कार्तवीर्य अर्जुन की, एक हजार, और उनकी पुत्र 100,000 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 100,000। तो सब एक साथ आए ये रुचि की वध करने के लिए। तो जब उस रुचि ध्यानस्थ थे, उस समय उनकी सिर छेदन करने के लिए जब पास में गए, तो रेणुका याच्यमान कृपणया राम मात्राति दारुणः, उनकी पत्नी रेणुका ने इन पुत्रों से याचना की, याच्यमान, और ऐसे कातर होकर के रोती हुई, इसे अधर्म मत करो, ये मेरी पति है, मारना है तो पहले मुझे मार दो। इन्होंने बहुत प्रकार याचना की। राम मात्रा अति दारुणा, जो रेणुका जमदग्नि की पत्नी और परशुराम की मां थी, उन्होंने याचना करने पर भी इन पुत्रों ने उन प्रति दया नहीं की। प्रहस्य शिर उत्कृत्यं निन्युस्ते क्षत्र बंधव, क्योंकि वास्तविक वो क्षत्रिय नहीं थे, इसलिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते क्षत्र बंधव, ये सब क्षत्रिय बंधु थे। जैसे कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है परंतु उसके पास ब्राह्मण की गुण नहीं है, तो इसको हम कहते द्विज बंधु। तो उसी प्रकार जो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं परंतु उन पास क्षत्रिय के गुण नहीं है, क्षत्रिय के गुण क्या है, सौर्य तेज धृतिर त्राख्य युद्धे च अपलायनम दान ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम। ईश्वर भाव, शौर्यता, तेज, पराक्रम, धृति विचार शक्ति, दक्ष एक्सपर्ट, और कभी युद्ध भूमि से शत्रुओं को देखकर के नहीं भागता है। यहां दो गुण के ऊपर विचार करना चाहिए। क्षत्रिय से कुछ कोई याचना करता है तो उसकी इच्छा को वो पूर्ति करता है, यदि अच्छी क्षत्रिय है, सच्ची क्षत्रिय है, तो निश्चित रूप से याचना करने वाले की इच्छा को पूर्ति करता है, क्योंकि उनके पास क्या है, ईश्वर भाव और धृति। जैसे भगवान की कोई शरणागत होता है तो भगवान उसको माफ कर देते हैं, तो उसी प्रकार जो भगवान की प्रतिनिधित्व करने वाले राजा व क्षत्रिय, उनके पास दया गुण रहता है। परंतु रेणुका याचना करने पर भी ये क्षत्र बांधव उत्पत्य सीरम प्रहस्य नियुस्ते, उन्होंने सिर को काट दिए और ऐसे बलपूर्वक उखाड़ करके चल गए। और ये रेणुका क्या कर रही थी, रेणुका दुख शोकार्त निघ्नत्यात्मन आत्मना राम रामेति तातेति विचुक्रश्च शोचकैः सति। निघ्नन्त वो अपनी छाती को पीटने लगी, हाय हाय मेरी रहते हुए भी मेरे पति के ऐसे दयनीय दशा हुई। एक स्वाभाविक ऐसे एक स्त्री की होती है, छाती पीटती हुई विलाप करती हुई दो दुख सोकार तब दुख और शोक से आत्मनं आत्मना स्वयं को ऐसे ही उसमें जोर दिए, दुख शोक से डूब गए और जोर जोर से चिल्लाने लगी, राम राम राम, अरे मेरे बेटे तात इती, जोर जोर से पुकारने लगी। सोच कही सती, सुखदेव गोस्वामी कहते वास्तविक वो सती थी, भले ही जामदाग्नि उनके थोड़े से दोष के लिए उनको दंड दे परंतु वो सती स्त्री थी। ऐसे यदि आज मॉडर्न सिविलाइजेशन में देखें कोई स्त्री जो अपने पति के द्वारा मारा गया है बा दंड दिया गया है तो उनको जब दंड मिलता है तो तुरंत क्या कहेगी, हाँ ये देखा मेरे प्रति ऐसे अपराध करने के कारण आप मिल गया परिणाम, अच्छा हुआ। कोई भी ऐसी स्त्री बोल सकती है जो पति की दोष पर बदला लेना चाहती है, परंतु रेणुका ने ऐसा नहीं की, इसलिए यहां सुखदेव संगति वो सती है जो अपनी पति के दुख से सुखार्त है। तो जब वो जोर जोर से पुकारने लगी, हे राम हे राम हे परशुराम तुम कहां हो, अन्य पुत्रों के नाम नहीं ली, क्यों ना रेणुका जानती थी राम ही वास्तविक अपने पिता की रक्षा कर सकता है, क्योंकि कार्तवीर के अर्जुन को मारने वाला वही राम है। तो ये आवाज परशुराम को दूर से सुनाई पड़ा, तद्वत्सृत्य दूरस्थं हा रामेति आर्तवत् स्वनम, आर्त स्वर से पुकारती हुई रेणुका की शब्द को राम ने सुने, तोरया आश्रम असाध्य दुद्रुसुं पितरम हतम, और उन्होंने तुरंत जो भाई के साथ जंगल गए थे तो आपस तुरंत लौट करके आ गए, और जब आश्रम में आकर के देखे क्या है, दुद्रुसुं पितरम हतम, उनके पिता का हत्या हो चुकी है, मर चुके हैं। तो पिता की हत्या को देखकर कि परशुराम के मन में क्या क्षोभ उत्पन्न हुआ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ते दोखर समाति शोक वेग विमोहिता हातात साधु धर्मेष्ट तुक्त्वास्मान सर्गतो भवान। राम के साथ उनकी भाइयों ने सब एक साथ विलाप करते हुए कहने लगे, हा तात है पिता आप साधु थे, धर्मिष्ठ धर्म में आपकी मन था, आप हम सबको अस्मान त्वक्त्वा स्वर्गतो भवान, हम सबको त्याग करके आप अकेला स्वर्ग चल गए। साधारण ऐसे कहा जाता है भले ही कोई नरक जाए अपने पाप कर्म के लिए, लेकिन किसको हम भेजते हैं निमंत्रण पत्र इन्विटेशन तो उसमें पहले लिखते हैं गंगा बा स्वर्ग लिखते हैं, कोई नहीं चाहता कि हमारे पितर लोग नरक गामी हो बा नरक की कष्ट भोग करें। परंतु जामदाग्नि तो अब धर्मात्मा थे, उनको नरक मिलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, तो इसलिए उनके पुत्र ने विलाप करते हुए कहे, हे पिताजी आप अकेले ही हम सबको त्याग करके कहां चल गए, और परशुराम के अंदर क्या उत्पन्न हुआ, कहते हैं दुख रोषम अर्ष अर्ष शोक बेग विमोहिता, ये इतनी क्रोध में आगे अवस में आगे एक साथ पिता की हत्या का दुख और कार्तवीर जी अर्जुन के पुत्र के प्रति रोष क्रोध और अर्थ से उत्पन्न बदला लेने की भाव एक साथ उत्पन्न हुई, इसलिए उन्होंने क्या किए, विलेप्येवं पितृदेहं निधायं भातृसु स्वयं। उन्होंने अपने पिताजी की शरीर को अपने हाथ में उठाए, अपने भाइयों को इस शरीर को देख करके कहे, भाइयों इस शरीर को तब तक संरक्षित करके रखो जब तक मैं लौट के नहीं आता हूँ। पग्रुह्य परसुम राम क्षत्रांताय मनोदधे। उन्होंने कहे कि ये पृथ्वी में सारी क्षत्रियों को मैं निधान कर दूंगा, सब क्षत्रियों को मैं समाप्त कर दूंगा, और जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं तब तक मेरे पिता के शरीर को आप सुरक्षित रखना है। गत्वा महिष्मति राम ब्रह्मग्नं विहित प्रियं तेषां सा शीर्षभिः राजन् मध्ये चक्रे महागिरिम। तो ऐसा कह करके उन्होंने हाथ में परशु उठा लिया। अब जानते हैं ना परशुराम का प्रसिद्ध अस्त्र क्या है, फरसा और धनुष्वान। वो लेकर के परशुराम कहां चले, महिष्मति, महिष्मतिपुरी जो कार्तवीर्य अर्जुन का राजधानी था, तो वहां पहुंचे और उन्हें तुरंत इन कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों जो ब्रह्मग्न विहित स्त्रियम, इन पुत्रों के लक्षण को बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। कहते जो ब्रह्म हत्या करने के कारण उनकी सारी स्त्रियम अर्थात उनकी जस, उनकी शक्ति, उनकी जो भी कुछ धन संपत्ति है सब पहले से नष्ट हो चुका था। इसलिए अपराध करने से, चाहे ब्राह्मण के अपराध हो बा वैष्णव के अपराध, तो सब प्रकार के ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। जैसे कंस की हुई, और सुखदेव गोस्वामी वहां कहते हैं कि छह चीज नष्ट हो जाता है, उनका वैभव, राज्य लक्ष्मी, सम्मान, लोक प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं, स्वजन संबंधी के साथ जो संबंध, स्वर्ग प्राप्त करने की जो पुण्य, ये छह प्रकार की चीज एक साथ नष्ट हो जाता है। अर्थात वो व्यक्ति निश्चित रूप से नरकगामी होता है। इसलिए एक चैतन्य चरितामृत में एक शब्द है, माया बादिर भाष्य सुनिले हये सर्वनाश। क्योंकि वो दूसरे के प्रति, गुरुजन के प्रति ऐसे विचार नहीं रखते हैं कि हमसे श्रेष्ठ है, सबको एकत्व भाव में देखते हैं कि हम सब ब्रह्ममय हैं, कोई किसको नहीं मारता है। तो सर्वनाश का मतलब है वो जो कुछ संचित है ये जीवन में, कुछ भी पुण्य व श्रेय, ये तुरंत नष्ट हो जाता है। यहां कहा गया है ब्रह्मज्ञ विहित स्त्रियम, एक ब्राह्मण को हत्या करने के कारण जो पाप निश्चय, पाप करने के लिए जिनके मन में एकदम संकल्प था, दृढ़ संकल्प था, तो ये संकल्प के कारण उनकी सारी स्त्रिया नष्ट हो गया। जो लोग कोई धनी बा आढ़िया परिवार में जन्म लेते हैं, ये समझना चाहिए कि उनके पूर्व जन्म में बहुत कुछ पुण्य है। ए पर्सन हुई से बर्न विथ द सिल्वर और गोल्डन स्पून हैज सम फाइव। तो बात बोलते थे कि कोई कोई सोना व चांदी के चामच लेकर की जन्म लेता है। कहने का मतलब नहीं जन्म के समय किसका मुंह में लगा रहता है चांदी और सोना, अर्थात जो ऐश्वर्य संपन्न होता है वह धनी परिवार में जन्म लेता है, पूर्व जन्म में उसके पास कुछ सुकृति है, लेकिन जब धन के द्वारा वो घमंडी बन जाता है, अभिमानी बन जाता है, ये सारे ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। जैसे नल कुबर और मणिग्रीप की हुई, वो फेड की जन्म लेना पड़ा उनको, यदि वो कुबेर का पुत्र थे, पहले तो ये अपराध करने के कारण उनकी सारे श्रेय नष्ट हो चुका था, सारे शक्ति भी नष्ट हो चुका था। अभी परशुराम ने सिर्फ जा करके, जैसे पहले से हम देखते हैं किसकी जड़ गया है, सूख गया है पेट, तो इसको हिला दो तो गिर जाता है, तो परशुराम ने फरसे उठाए और ये लाखों पुत्रों की, एक्चुअल एक लाख नहीं 10 लाख पुत्र थे, 10 लाख पुत्रों की सिर को काट दिए और संबोधन करते हैं, राजन ये सिर को काटे नहीं, ये सिर को काट करके उन्होंने क्या किए ना, इस महिष्मतिपुरी जो उनकी राजधानी था, वो राजधानी के बीच में मध्य चक्रे महागिरिम एक बहुत बड़ा पहाड़ बना दिए। आप सोचिए जिनकी सिर से एक पहाड़ बन गया और बीचों बीच शहर के बीचों बीच ये पहाड़ के निर्माण किए। तो फिर अभी निर्णय पूछते हैं कि ठीक किए कि गलत किए। बताइए ये जो परशुराम ने क्षत्रियों को दंड दिए ये ठीक किए कि गलत किए। निश्चित रूप से ये सही है, क्योंकि जिनको धर्म रक्षा करने के लिए भार सौंप गए हैं, जिनकी जगह पर प्रजा व नागरिक सिर रख करके शांति से सोते हैं, वही राजा बा वही रक्षक यदि स्वयं उन सिरों को काटे तो क्या परिणाम होगा। यही प्रसंग है नौमा स्कंद में, ये आगे है इस चर्चा। जस्यां के सिर अधाय प्रजा स्वापि सते निद्रा, तो शांति से सोते हैं। ये किसकी प्रसंग है कि आप उन पर ही आक्रमण करते हैं, ये था शायद 11वां अध्याय में। हाँ रामचंद्र वही कहते हैं कि रावण इतनी दृष्ट था, तो सारी प्रजाओं को मारने के लिए रावण चाहे कंस हो, तो उन्होंने आदेश दे दिया जितने सब बच्चे जन्म लिए हैं अभी थोड़े दिन दर उनको सबको समाप्त करो। कितनी घातक है। तो ऐसे राजाओं को दंड देने के लिए परशुराम ने अपने फर्श के इस्तेमाल किए धर्म स्थापन करने के लिए। तो आज हम उस श्लोक को पढ़ेंगे कि उनको मारने के बाद परशुराम ने क्या किए। श्लोक 18 और 19 के हैं, तो सिर्फ 19 नंबर श्लोक लिखा है, तो मैं 18 को स्वयं आवृत्ति करता हूं। तदरक्तेन नदीं घोरम अब्रह्मण्यं भयावहम् हेतुं कृत्वा पितृवधम् क्षत्रे मंगलकारिणी। मेरे साथ बोलिए, त्रिसप्त कृत्वा पृथिवीं कृत्वा निक्षत्रियं प्रभु समंत पंचके चक्रे शोणितोदान हलदान नबा त्रिसप्त कृत्वा पृथिवीं कृत्वा निक्षत्रियं प्रभु समंता पंचके चक्रे सुनीतो दान लदान नव त्रिसप्त कृत्व पृथिवीं कृत्व स्वानिक्षत्रियं प्रभो समन्ता पञ्चके चक्रे शोणी पूदन हदन्नब त्रिसप्त कृत्वा पृथिवीं कृत्वा निक्षत्रियं प्रभो समन्ता पञ्चके चक्रे शोणी उदान हलदन्नब दो लोक माताएं दो समन्ता पञ्चके चक्रे शोणी उदान तदरक्तेन कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों की रक्त से नदी एक नदी घोरम भयानक अब्रह्मण्य भय आबहम उन राजाओं को भया उपजाती हुई जिन्हें ब्राह्मण संस्कृत के लिए कोई सम्मान नहीं है हे तुम कारण स्वरूप कृत्वा स्वीकार करके पितृवधम पिता के वध का क्षत्रे जब संपूर्ण राजवर्ग को अमंगलकारिणी अत्यंत अशुभ ढंग से कार्य कर रहे थे त्रिसप्त कृत्वा 21 बार पृथ्वीं पृथ्वी को कृत्वा करके निक्षत्रियं क्षत्रिय से रहित प्रभु भगवान परशुराम ने समन्त पंचक नामक स्थान पर चक्रे बनाया शोषित उदान का मतलब है जल स्वच्छता मतलब जल के बदले खून की फुरीत झिल्लियां हलदान झिल्लियों को नबा न अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय मेरे पीछे दोहराइए तो अनुवाद। इन पुत्रों की रक्त से भगवान परशुराम ने विभत्स नदी तैयार की, जिससे उन राजाओं को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया, जिससे ब्राह्मण संस्कृति की प्रति निरादर भाव रखते थे, क्योंकि संस्कार के अधिकारी लोग क्षत्रिय पाप कर्म कर रहे थे। अतएव परशुराम ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सारे क्षत्रियों का 21 बार पृथ्वी से सफाई कर दिया। निसंदेह उन्होंने समंत पंचक नामक स्थान पर उन सबके रक्त से नौ झिल्ली बन कर दी। तात्पर्य आप ध्यान पूर्वक सुनिए। परशुराम भगवान है और उनका शाश्वत ध्येय है। भगवान का क्या प्रयोजन है यहाँ पर जब अवतरित होते हैं? परित्राणाय विनाशाय च सुकृताम, संत भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों को विनाश करना। भगवान के अवतार लेने के कारण परशुराम ने उन पापी लोगों को बद्ध किए। भगवान परशुराम ने सारे क्षत्रियों का क्रमश 21 बार बद्ध किया, क्योंकि वे ब्राह्मण संस्कृति के पालक नहीं थे। यह तो बहाना था कि क्षत्रियों ने उनके पिता के वध कर डाला था। वास्तविक तो यह है कि राजन्य वर्ण या क्षत्रिय दूषित हो चुके थे और उनकी स्थिति अशुभ थी। शास्त्र में विशेषतया भगवद गीता में ब्राह्मण संस्कृत के लिए आदेश है, चातुर्वण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभाग तस्य कर्तार अपि मं विद्धि कर्तारम अव्ययम्। प्रकृति के नियमानुसार चाहे वह परशुराम का युग हो या वर्तमान युग, यदि सरकार निकामी तथा पापमय हो जाती है और वह ब्राह्मण संस्कृति की परवाह नहीं करती, तो परशुराम के समान ईश्वर का अवतार अवसंभावी है, जो अग्नि, अकाल, बीमारी या अन्य विपदा से प्रलय उत्पन्न कर देगा। अभी भी परशुराम उन क्षत्रियों को जो ब्राह्मण संस्कृति और लोगों की प्रति आदर भाव नहीं रखते हैं, उनके लिए भी अभी दंड प्रदान करते हैं। किस प्रकार? प्रभुपाद कहते हैं, आग लग जाना, भूकंप, अकाल, बीमारी व आतंकवादियों के आक्रमण, और सुनामी, ये सब प्रलय उत्पन्न कर देगा। जब भी सरकार ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता का अनादर करती है और वर्णाश्रम धर्म की रक्षा नहीं करती, तो उसे उसी प्रकार ही तबाही सहनी पड़ेगी, जैसे कि पहले परशुराम द्वारा उत्पन्न की जा चुकी थी। तो भगवान कभी कभी प्रकृति को आधार बनाकर के प्रकट होते हैं। संभवामी आत्ममायया प्रकृति सुमधष्टाय, तो उसी प्रकार कभी कभी भगवान स्वयं प्रकृति के माध्यम बना करके भी इस दुष्टों को ऐसे ही संयमित करते हैं, शासन करते हैं। तो इसलिए परशुराम जी के अवतार के कारण जयदेव गोस्वामी दशावतार सूत्र में क्या लिखते हैं? क्षत्रिय रुधिर मय जगत अपघतम पापम स्नपयसि पयसि संहितम भवतापम केशवधीता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश। हरे जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमय इन दुराचारी राजाओं की खून को जो जगत की पाप स्वरूप था, इन क्षत्रियों को मार करके ऐसे नदी बनाए, खून की नदी, पानी से नहीं। जगत अपगतम पापम, और क्या लाभ हुआ ना, जगत की सारी पाप इन क्षत्रियों को मारने से ही साफ होता है। यदि कंस, रावण, शिशुपाल जैसे राजाओं की शासन ना हो तो राज्य में पाप वृद्धि नहीं होगा। तो वास्तविक दुष्टों को मारना ही धर्म की स्थापना है, वो फिलर व फाउंडेशन है। इसलिए भगवान कहते हैं विनाशाय दुष्कृतम, साधुओं को तो रक्षा करता हूं लेकिन ये दुष्टों को विनाश करना पड़ता है। जब तक उन दुष्टों के संहार नहीं होता है तब तक संसार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। इसलिए प्रकृति ने आपस में झगड़ा करके, जैसे देखते हैं कि बांस के टुकड़ा आपस में घिसटती हुई अग्नि उत्पन्न होता है और दोनों ही जल जाते हैं, तो उसी प्रकार आपस में इस दुष्टों के बीच में हमेशा ही युद्ध व लड़ाई चलता रहता है और ये दुष्ट लोग समाप्त होते हैं। और भगवान परशुराम ने, जिसकी यहां पर प्रभु शब्द से संबोधन किया गया है, कृत्वा क्या किया उन्होंने, ब्रह्म हत्याम, ये ब्राह्मण को, ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट करने की कारण को, निक्षत्रियांग प्रभु त्रिसप्त कृत्वा, तीन सप्त 21, तीन गुना सात 21, उन्होंने सारी क्षत्रियों को समाप्त कर डाले। यहां तक कि जो गर्भवती स्त्री थी उनकी भी गर्भ को, आप देखो कितनी घोर, भगवान होने पर भी ऐसा क्रोध करते हैं। और परशुराम ने पूरा ढूंढे, पृथ्वी लोग पूरा छानबीन कर लिए कहां कहां क्षत्रिय हैं। जैसे कयाधु के गर्भ में ये संतान को देखकर कि इंद्र ने सोचा ये जन्म लेते ही ये उत्पात पैदा करेगा। प्रभवन्ति उग्र कर्माणम ख्याय जगतो हिता, असुरों के स्वभाव क्या है, ये उग्र कर्म सब पैदा करते हैं। ये जो बड़े बड़े सो फ्लैट बनता है, फैक्ट्री बनता है, ये सब उग्र कर्म है। सरल जीवन को नष्ट किया जाता है, इन्वेंटेशन है जो हम टेलीविजन, नेट व हम यूज करते हैं, क्या लैपटॉप व कंप्यूटर, ये सब उग्र कर्म है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, जब असुरों के शासन चलता है ये तो मर्डर हो गया है, तो करना चाहिए। अरे कौन अभी हल लेकर के जाएगा, अभी ट्रैक्टर हो गया, खेती करो, कौन इतना पसीना निकालेगा। लेकिन क्या होता है, जगत की विनाश होता है, लोगों को शुद्ध भोजन नहीं मिलता है, शरीर अभी रोग से पीड़ित है, लोगों के मन में मानसिक तनाव है। यही कारण है कि उग्र कर्म खेयायो जगतो हिता। इसलिए कलिजुग के लक्षण को सुत गोस्वामी कहते हैं, प्रायेण अल्पायुष सभ्या कड़ौ अस्मिन जुगे जना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। ये भी डिस्टर्बेंस है, उपद्रुता। लेकिन यदि मोबाइल नहीं हुआ तो शांति से कथा होती है ना। तो कलिजुग में सब जगह डिस्टर्बेंस है, गाड़ी की आवाज है, ध्वनि तरंग, ये नष्ट करता है कान के पर्दा को। यदि आवाज है, आवाज ऐसे डांडिया खेलते हैं अभी, तो कोई शांति में सोता है क्या? डिस्टर्ब होता है ना, लेकिन लोगों को लगता है तो हम मजा में हैं, है ना, मजा मा ना? लेकिन मजा नहीं है। हा? जब रात्रि के समय सोना चाहिए ये असुरों की तरह, क्योंकि निशाचर लोग रात में नहीं सोते हैं। बुरा नहीं मानना है कि सत्संग हमारे गुजराती लोगों को निंदा कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जो दैव हैं, देवता लोग हैं, वो रात्रि में सोते हैं और दिन में जगते हैं, लेकिन असुर लोग रात्रि जागरण और दिन शयन। डिस्टर्ब है, उपद्रता। 12:30 तक टेलीविजन लोग देखते हैं, अपने शक्ति को खेल करते हैं। कहते काम आश्रित दुष्परं दंभ मान मदन्निता मोहात गृहित्व असत ग्रहण असत ग्रहण प्रवर्तन्ते सुचिव्रता। उनको असत ग्रह ने पकड़ लिया है, कौन सा? काम, काम आश्रित दुष्पूरम। तो इससे लोग कैसे सुखी हो सकते हैं, कैसे शांति में चैन रह सकते हैं? जो बेचैन है, नास्तिरी बुद्धि अजुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च अभाव यत शांति अशांतस्य कुतम सुखम। भगवत भक्ति में जिनकी रुचि नहीं है, ब्राह्मण संस्कृति प्रति जिसके आदर नहीं है, इस सिविलाइजेशन के प्रति नहीं, तो असुरिक सिविलाइजेशन बढ़ेगा ना। जो काम पर आधारित है, ये सोना नहीं है, यहां पर निद्रा भी एक प्रकार की तमोगुण है, गुढ़ा के सोना, तब फिर कृष्ण के संदेश को सुन पाएंगे। तो इस प्रकार क्षत्रिय की जो संस्कृति है वो ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करना है। इसलिए क्षत्रिय का मतलब है जो दूसरे के शरीर, जो धर्म के साधन है। यदि हम, हमारे पास ये शरीर नहीं होता तो हम कैसे जप करते हैं, कैसे मंदिर में आकर के प्रणाम करते हैं? इसलिए शरीर को कहा जाता है खड़ु धर्म साधनम, इदम शरीरम खड़ु धर्म साधनम। तो क्षत्रिय को चाहिए कि इस धर्म की रक्षा करने के लिए शरीर को रक्षा करे। क्षत्र, परंतु वो क्षत्रिय जिन्होंने धार्मिक संस्कृति को रक्षा करने वाला उनको नष्ट करते हैं। ब्राह्मण वैदिक संस्कृति व वेद की ज्ञान को प्रदान करता है, इसलिए 4 वर्ण के गुरु हैं ब्राह्मण, परंतु सन्यासी 7 वर्ण के गुरु हैं। वर्ण और आश्रम के गुरु हैं सन्यासी। तो जमदग्नि ध्यानस्थ थे, उस समय चाहिए जैसे परीक्षित महाराज की भी थोड़ा से कलिजुग के प्रभाव से भगवान तो निमित्त बनाए उनको, लेकिन श्रमिक ऋषि के ऊपर उन्होंने मरा हुआ सांप को डाल दिए, परंतु वो पश्चाताप किए। उनके मन में मारने के लिए भी इच्छा थी, परंतु संस्कारित होने के कारण, भगवत भक्त होने के कारण भगवान ने उनको भी चेतना देते। तो परीक्षित महाराज ऐसे कर्म नहीं किए। और विगरहितम कर्म, इस प्रकार विगरहित कर्म करने के कारण परीक्षित महाराज जब घर लौट करके आए, बारंबार सोचने लगे, पश्चाताप करने लगे। और यहां पर कहा जाता है कि परीक्षित महाराज के पास इतनी शक्ति थी, वो चाहे यदि चाहते थे तो श्रृंगी मुनि के सांप को वो भी रिपीट कर सकते थे, नष्ट कर सकते थे, परंतु ऐसा नहीं किए। नारायण परा सर्वगा न कुतस्य न विद्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेश अपि तुल्यार्थ दर्शनम्। वो किसी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता है, उनको एक समान है, चाहे सुख दुख स्वर्ग नरक सब। तो परंतु आज की जो क्षत्रिय हैं, वो देखा जाए तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार इंस्टीट्यूशन बंद हो जाना चाहिए, असेंबली सब बंद हो जाना चाहिए, देन यू कैन गेट पीस। कहते हैं कि ये शिक्षानुष्ठान क्या कर रहा है, सबको नरक भेज रहा है। लड़का लड़की नहीं होने, रास्ते पर कुत्ते बिल्ली की तरह संभव कर रहे हैं, तो क्या परिणाम होगा? प्रभुपाद क्लियरली प्रेस रिपोर्टर के सामने ऐसे बोल रहे हैं कॉन्फिडेंटली, कहते ऐसे अनुष्ठान को बंद कर देना चाहिए शिक्षा अनुष्ठान को, और कहे कि ये जो राजे लोग अभी सिंहासन पर बैठे हुए हैं तो इसको और प्रोत्साहित कर रहे हैं, हाँ और वाइन सब फल जाए और लोगों को इंद्रिय तृप्ति के लिए और सुविधाएं दिया जाए। वेरी इजीली दे आर गोइंग टू हेल, कोई बुकिंग करना नहीं पड़ेगा, वीजा व पासपोर्ट कुछ नहीं, अपने आप चल जाएंगे, जो कर्म है ना फिर बुकिंग कर लेते हैं अपने आप। तो उस समय तो हम देखे थे कि तृतीया युग में रावण और उनकी बहन सुपर्णरेखा है ना, उनका बहन, तो वो डुप्लीसिटी किए, ये राजा के मुकुट पहना था और ये राजा के मुकुट उतार करके एक सन्यासी वेश धारण करके चल गया। दोनों का बीच में, दोनों का मन में ये विचार था, क्या वो चाहता था कि मैं राम की पत्नी सीता को प्राप्त करूं, वो क्या इच्छा थी उनकी कि मुझे सीता प्राप्त हो जाए, वो तो भक्ति स्वरूपिणी है, और ओपोजिट था उनकी बहन की भाव, क्या मुझे राम प्राप्त हो, राम सबसे सुंदर है। परंतु उन्होंने जो मीन्स जो माध्यम अपना है वो था क्या, दो नंबर की। ये रावण ने सन्यासी वेश धारण करके गया और उनकी बहन लक्ष्मी जी की रूप धारण करी, जैसे पुतना ने गई थी कमल के फूल लेकर। तो इसलिए इस प्रकार प्रयास से ये दोनों को किसी को सफलता नहीं मिला, तो दोनों ही प्राण से अपने हाथ धो लिए। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि आज समाज में सो फ्लटरिंग, जैसे कलियुग जब आया तो परीक्षित महाराज क्या देखे कि कली एक सुंदर वस्त्र पहना हुआ है, राजकीय वस्त्र पहना हुआ है, परंतु क्या करता था, वेल के पैर काट रहा था। तो उसी प्रकार ये जो राजवर्ग हैं, हम देखते हैं कि वोट लेकर के सिंहासन पर बैठते हैं परंतु उनकी हृदय में इसी प्रकार की पाप वासना भरी हुई है। और आज की नागरिकों का वही ना है कि जब तक कोई रावण बनने का इच्छा नहीं करता है तो असेंबली में नहीं जाएगा, चुनाव नहीं लड़ेगा। लगभग सभी दस्यु प्रायेषु राजनेषु, श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रायः लगभग 99% लोग इसी प्रकार है। इसलिए क्षत्रिय की जो वृत्ति व उनकी जो नैतिक कर्तव्य है उसको जब वो रक्षा नहीं करते हैं तो स्वयं भगवान इस प्रकार दुष्ट राजाओं को दंड देने के लिए अवतरित होते हैं, क्योंकि वो ही राजा ही वास्तविक पृथ्वी की भार है। राजा जैसे बनता है प्रजा उसी प्रकार बनते हैं। कितने आदर्श राजा थे, प्रजा की सुख सुविधा के लिए स्वयं जाकर की एक साधारण सेवक के रूप में सबके पास पहुंचते थे। आजकल वोट लेने के बाद कोई प्रजा को दिखता भी नहीं, अपने गद्दी पर बैठ गए, ठीक उसी समय आएंगे जिस समय चुनाव होगा। परंतु राम की आदर्श देखिए, ने प्रजाओं की सुख दुख की खबर लेने के लिए छद्मवेश में जाते थे और प्रजाओं को सुख देने के लिए सब प्रकार प्रयास करते थे। लेकिन आज की राजा क्या सोचते हैं, प्रजा भाव में जाए, हम आनंद में रहे, मौज में रहे। तो किस प्रकार ये सिविलाइजेशन है, संस्कृति है। इसलिए कहते कृत्वा, इसको सिर्फ एक माध्यम बनाए कि केवल मेरी बाप की प्रति नहीं, वैसा यदि सोचते हैं प्रभु यहाँ पर शब्द प्रयोग किए हैं सुखदेव गोस्वामी प्रभु, प्रभु का मतलब है जो कंट्रोलर है। भगवान को हम प्रभु कहते हैं, भक्तों को हम भी प्रभु एड्रेस करते हैं, तो इंद्रियों पर संयम रखते हैं। क्योंकि परशुराम ये सारे जगत को नियंत्रण करते हैं, क्योंकि भगवान के सत्यावेश अवतार है। तो उन्होंने क्षत्रिय मंगलकारिणी, क्षत्रे मंगलकारिणी, हम देखते हैं कि संसार में सब प्रकार अशुभ से भरा हुआ है, अनित्यम असुखम लोकम। ये जो संसार है इसमें कोई सुख नहीं है, परंतु हमको लगता है कि ये सुख है, परंतु यदि वास्तविक सुख है वो सुख है भगवान के साथ अपने संबंध। तो मनुष्य जब तक इस विचार पर उपनीत नहीं हो पाता है तो सुख और दुख क्या है इसके अंतर को नहीं समझ पाएगा। प्रायतः अभी देखा जाए लोगों का जिस चीज में निवृत्ति होना चाहिए उसमें ही प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति निवृत्ति जनानम विदुरासुरा। धर्म कार्य में अच्छी व्यक्ति का रुचि होता है, परंतु अधर्म कार्य में असुरों का। और कलिजुग की जो प्रतीक है दुर्योधन, तो भगवान उनके पास गए और कहे कि दुर्योधन इसी प्रकार भाई भाइयों के बीच में लड़ाई ठीक नहीं है, कितनी रक्तपात होगा अब जानते हो इसके परिणाम। तो दुर्योधन ने कहा जानामि धर्म, मैं जानता हूं क्या है, न चम प्रवृत्तिम, उसमें मेरे कोई रुचि नहीं है। अच्छा अधर्म का परिणाम जानते हो, मैं भी जानता हूं, जानामि अधर्म न चम प्रवृत्तिम। उसी प्रकार कलिजुग के लोगों को सबको पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। सिगरेट पैकेट पर पढ़ते हैं स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, पढ़ते हुए भी और देखते हैं कि जो सिगरेट पीने वाला व्यक्ति को कैंसर होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं फिर भी अपने मुंह पर लगाते। मुझे भी एक खराब लगता है बोलने के लिए, हमारे कॉलेज में एक प्रिंसिपल था, तो वो रास्ते में स्कूटर चला के आएगा, जब वो एंटर करेगा कॉलेज बाउंड्री के अंदर तब वो सिगरेट लगाएगा और ऐसे स्टाइल करके वो आएगा तो सभी स्टूडेंट के सामने कि तो मेरी आदत देखो और आप लोग सब अपनाओ। तो हमने एक बार कह दिए कि हम थोड़ा से जो आई क्या है SFI, तो लीडरशिप में थोड़ा था, तो मैं कहा कि ये स्टाइल नहीं चलेगा, तो हमको माइनस मार्क दिए मेरे प्रैक्टिकल में कि लोगों को कह नहीं सकते हैं आधार्मिक में इतनी उनकी प्रवृत्ति हो गया है दुर्योधन की तरह, उनको बोल नहीं सकते, पर उनको ऐसे ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। मरते समय हाँ दुर्योधन के मन में क्या उत्पन्न हुआ है, एक साथ उनके अंदर शोक और अमर्थ। अश्वत्थामा ने जब सिर काट के लाया तो वो कहा अच्छा पांडव को मार दिए हो, उनके मन में थोड़ा से आनंद। और जब सिर को हाथ में लिया कहा अरे ये तो पांडव का सिर नहीं है, तुम हमारी कौरव और पांडव की पूरा वंश को तुम नष्ट कर दी। एक साथ उनका अंदर आनंद और दुख, और उसी समय प्राण त्याग। तो लोग सोचते हैं कि हम बहुत डेवलप हो गए, मेरे पास अभी करोड़ों रुपया है, बहुत सुंदर महल है, परिवार से पत्नी सब सुखी हैं, सब एस्टैब्लिश्ड हैं, परंतु मरण के अंतिम समय में इस प्रकार शोक करना पड़ेगा। कैसा शोक, मैं जीवन में जो असली धन को नहीं कमा पाया, सब कुछ मुझे अभी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वैदिक संस्कृति व ब्राह्मण संस्कृति के उत्थान न होने के कारण आज कलयुग में सभी लोग शूद्र हैं। शूद्र प्रायेषु, जैसे शूद्र लोग कभी धर्म को नहीं समझ पाए क्योंकि वो लोग महाजन को फॉलो करना नहीं चाहते हैं। महाजन जनक अतस्य पंथा, शूद्र ही अपना वे दिखता है। मैं जो रास्ता बनाए हूं वही रास्ता ठीक है। इसलिए प्रह्लाद जी कहते हैं, अंधा जथा अंधेव उपनीयमानम तेपी स्वतंत्रा उरुदाम निबद्धा। वो अपने को सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं परंतु बद्धे हैं। कैसे कहते हैं, जैसे एक उल्लू वो सोचता है कि मैं एक स्पेशल पर्सनालिटी हूं, और पक्षियों ने जब देखे, अरे ये उल्लू तो रात में देख लेता है, सचमुच इनको हम पक्षियों के राजा बनाना चाहिए। परंतु इन पक्षियों का नहीं था, ये उल्लू महाराज को दिन में दिखता नहीं है। उन सभी लोगों का कि हाँ हम भी वोट देंगे कि उल्लू महाराज हमारी राजा हैं, महाराज बना दिए। और ये उल्लू महाराज जब वोट में जीत गए तो सभी पक्षियों को कहा कि चलो मैं आपको भोज देता हूं और हम इस पिकनिक करेंगे फॉरेस्ट में, अच्छा जंगल में नहीं शहर में करेंगे, धूमधाम में मनाएंगे। तो सारे पक्षियों को कहा कि चलो मैं आगे चलता हूं और आप मेरे पीछे पीछे आओ। तो ये उल्लू महाराज को माला पहना दिया, मोटा माला, और सब लोग ड्रम बजाते हुए चले, ताली बजा रहे हैं, उल्लू महाराज की जाए, उल्लू महाराज की जाए। तो वहां से एक ट्रेन आ रहा था, शहर में प्रवेश करते रेल लाइन था। तो सब पक्षियों ने कह दिया, देखो ये ट्रेन आ रहा है, अभी हमारे ऊपर अड़ जाएगा। तो ये उल्लू महाराज कहते, अरे मैं राजा हूं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, चिंता मत करो, कोई ट्रेन नहीं है, वो क्या मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, मुझे सब कुछ दिखता है। आपने जो कमियों को वो छिपा के रखा, उनको दिखता नहीं था कि ट्रेन आ रहा है। तो सब पक्के कहे, हाँ ये तो हमारे राजा हैं, सुरक्षक हैं, तो वही हमारी रक्षा करेंगे। परंतु जब ट्रेन आया तो क्या हुआ परिणाम, साफ सबका जय हो गया। तो ऐसा ही जो राजा लोग हैं और जो निर्बोध प्रजा है, क्योंकि ये तो एक अंधा नंबर वन है, और उनके पीछे जयगान करने वाला भी, वो भी सब अंधा लिस्ट में है, कि तुम अंधे को राजा बनाए हो। तो इसलिए ये इस प्रकार परिणाम व दुर्भाग्य का दृश्य देखना पड़ता है प्रजाओं को। तो परशुराम ने इसी प्रकार स्थिति को पहले सुधारने के लिए उन्होंने दंड दिए। हेतु कृत्वं पितुर्वध्रम क्षत्रे अमंगलकारिणा। सिर्फ अपने पिता के हेतु बनाए, निमित्त मात्र, सिम्टम्स। और परीक्षित महाराज भी देखे, जब कलयुग को प्रवेश किया तो तुरंत उद्यत हुए मारने के लिए, क्योंकि ये कलयुग जब तक रहेगा तब तक भविष्य में प्रजा कोई शांति में नहीं रह पाएंगे। फिर प्रश्न उठ सकता है कि परीक्षित महाराज जैसे धार्मिक राजा कलयुग को कैसे माफ कर दिए, क्यों उनको मारे? हम तो तब शांति में रहते, ऐसा क्यों नहीं किए? कौन जवाब दे सकता है, क्यों नहीं मारे परीक्षित महाराज, क्या कारण? हाँ, हाँ क्या ठीक है, शरणागत को रक्षा करना चाहिए, नहीं तो अपने राज्य से भगा देना चाहिए था, मैं भाग जाऊं। नहीं, हाँ नहीं ये सबको पता है, ये बात सबको पता है, परंतु जो सटल थिंग है जो सत्संग में, जो कलिजु को क्यों माफ कर दिए, पाप ने राज्य से क्यों नहीं भगाए, कारण क्या था? एक कारण था कि कलिजुग में हम मन से बहुत बुरी विचार रखें, परंतु इसके परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा जब तक हम नहीं करते हैं। परंतु यदि हम सिर्फ मन में अच्छी विचार रखें, भावना रखें, परंतु इसकी परिणाम हमको मिल जाएगा। ये कलिजुग के एक बेनिफिट है, मन से सोचने पर फल प्राप्त हो जाता है अपने आप, समझ रहे हैं? परंतु हम सबकी मन गंदे हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे कि पहले अच्छा, पहले अपने मन को स्वच्छ बनाओ, से तो दर्पण मार्जन। तो फिर जब शुद्धि हो जाता है, तब जितने अच्छे विचार हैं, भले ही आप ठाकुर जी को माला बनाकर नहीं पहनाए, लेकिन विचार किए कि मैं ठाकुर जी को एक स्वयं हाथ में माला बनाकर के पहनाऊंगा, केवल इतने सोचने पर आपको फल मिल गया। जो फल आपको बना करके पहनाने से मिलेगा, वो फल आपको सोचने पर भी मिल जाएगा, समझ रहे हैं? इसलिए परीक्षित महाराज इस गुण को देख करके कलिजुग को स्थान दे दी। तो अस्ति एक महान गुण क्या है, उस लाभ को प्राप्त करने के लिए गुण क्या है, ये हरिनाम संकीर्तन, कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजित। एक एव ही गुण, ये समुद्र की तरह दोष है, परंतु गुण एक है, और वो गुण क्या है, भगवान के नाम संकीर्तन, जिसके द्वारा हम अपने चित्त को शुद्ध व विमल बना सकते हैं। उसके बाद अच्छी भावना पैदा होता है, तो कहते हैं ना, बुरी नजर वाले तरह मुंह काला। तो जिसके दृष्टिकोण बुरी है तो उनके मुंह भी काला है, कोई से पेंट नहीं लगाता है भाई उसके देखो काला मुख है, विचार तो अंदर रहता है लेकिन कैसे काला हो गया उसका मुंह, क्योंकि नजर जिसकी बुरी है उसकी मुख भी बुरा है। इतना फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो जिसकी मन गंदा है तो उसके मुख भी इस प्रकार गंदा है। तो जिसकी मन शुद्ध विचार से है, भरी हुआ है, तो वो कभी इस प्रकार गलत विचार नहीं करता। एक दृष्टांत है, एक दुष्ट व्यक्ति था, एक संत ने पेड़ के बैठा, तो व्यक्ति ने कहा, अरे देखो ये नबटंकी कर रहे हैं, देखो साधु का बेस ले लिया है और अकेला आकर के यहाँ पर भोजन कर रहा है, पेड़ के नीचे बैठ करके वो वास्तविक भजन कर रहा था। वो कहे मुंह चला रहे ना, छिप करके खा रहे हो। तो साधु था तो कुछ जवाब नहीं दिया, कहते दुष्ट लोग तो ऐसे ही होते हैं स्वभाव। तो इसी प्रकार उन्होंने बहुत बुरे भले सब उनको गाली देते रहे, फिर भी वो साधु ने कुछ बोला नहीं। तो पास में एक किसान ने काम कर रहा था, ये दुष्ट व्यक्ति गाली देते देते उसका मुंह थक गया, भाग गया। इस शिशुपाल की तरह कृष्ण को भी वो शिशुपाल बहुत गाली देता था, मुंह सूख जाता था, पानी पी के भी देता था, इतने बदमाश था, परंतु भगवान उससे विचलित नहीं हुए, माफ कर देते थे। तो साधु के स्वभाव ऐसा ही है, साधु क्या है, प्रसन्न आत्मा, वो कभी अस्थिर नहीं होता है। भगवान भी शांत है, भृगु जी लात मारने पर भी नहीं कहे, अब जानते हैं ना कि भृगु जी आकर के लात मारे और पत्नी पास में बैठी हुई है, तो भगवान कुछ प्रतिवाद नहीं किए, क्योंकि सभी वृंदावन के बंदर आप देखते हैं कि जब बंदरी बैठता है तो वो बंदर जाकर के पेड़ को हिलाता है, खंबा को हिला देता है, अपने पौरुषता व्यक्त करता है कि बंदरी मुझे लाइक करेगा। बंदर का मन में यही है साइकोलॉजी। आप स्टडी करो, जो बंदरियां बैठे हैं तो अपने बड़ पराक्रम दिखेगा, पेड़ को हिलाएगा जोर जोर से और कूदा मरेगा वहां से वहां तक। तो सब पुरुष चाहते अपने पत्नी के सामने बल प्रदर्शित, पौरुषत्व प्रदर्शन करने के लिए। तो लक्ष्मी जी पांच संवाहन कर रही थी और भृगु जी आए लात उठाए मारे छाती पर। तो भगवान भी अपने पत्नी के सामने पौरुषत्व दिखाते हैं, क्योंकि पत्नी के सामने किसी पति को अपमान करते उसको बहुत लगता है, मरणातिथि रिच्छते। परंतु भगवान के पास कितना देखो, धीर शक्ति शांता। उन्होंने तुरंत खड़े होकर के उस भृगु जी के चरण को लेकर ही कहे, ब्राह्मण देव आप इतनी कष्ट करके चल करके आए, मैं आपको स्वागत नहीं कर पाया, और आपकी चरण कितनी कोमल है और मेरी वक्षस्थल कितनी कोठर है, आपकी पैर को कितनी कष्ट कितनी दर्द हुआ होगा। और भगवान ने उस चरण को सहलाने लगे तो ये देखकर के लक्ष्मी जी रुक गई। अरे तुम इसको दंड देना चाहिए था, तुम कैसे पति हो, लगता है कोई बल नहीं है आपके पास। और लक्ष्मी जी रुक करके चल गई। और इतना नहीं, भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मी जी जो चंचला है मैं जानता हूं, उनको मैं वक्षस्थल में स्थान दिया हूं, परंतु तुम ब्राह्मण हो, आप जैसे ब्राह्मण धीर विवेकी पुरुष वो हमेशा ही मेरी नित्य आराधना करते हैं, इसलिए मैं स्वयं अपने वक्षस्थल में आपके चरण को स्थान देता हूं। भले ही लक्ष्मी जी छोड़कर के चल जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपकी चरण चिन्ह मेरे वक्षस्थल में हमेशा के लिए रहे। ऐसा कौन हो सकता है, कोई देवता हो सकता है, ब्रह्मा जी शिव जी? भृगु जी तो परीक्षा लेने के लिए शिव पास गए और सिर्फ उनको टेस्ट किए वाणी से, परंतु वो राइफल उठा के आ गए भाई को मर्डर करने के लिए त्रिशूल। अरे पार्वती जी पैर पकड़ करके उनको मना, यार क्या करोगे, सब लोग आपको बोल रहे हैं शिव मंगलमय है और कल न्यूज़पेपर में छपेगा आप अपने भाई को मर्डर किए हैं, तो लोग क्या कहेंगे, शिव कहेंगे अशिव कहेंगे, थोड़ा समझा करो, अभी स्थिति ऐसा नहीं है, और ब्राह्मण है वो। और थोड़ा से परिहास में बोल दिया कि तुम कोई माला फला नहीं डालते हो, सेंट नहीं लगाते हो, ठीक बात है, तुम तो सांप डालते रहते हो, श्मशान के राख लगाते हो, तो कहना उचित ही है। और ब्रह्मा जी के पास गए, हाथ जोड़ करके हरे कृष्ण नहीं बोले तो गुस्सा हो गए। तो ब्रह्मा जी कितने तुमको मैं पढ़ाया लिखाया, वेद पढ़ाया, तुम इतने एडिकेट्स पता नहीं है कि पिताजी के सामने आकर के प्रणाम करना। तो भृगु जी समझ गए कितने पानी में है पिताजी। परंतु जब भगवान को परीक्षा लेने के गए तो भगवान की इस प्रकार शांत स्वभाव को देख करके भृगु जी के हृदय विदारित हो गया। इसलिए भक्तों के पास यही सहिष्णुता होता है। जस्यास्त भक्ति भगवत अकिंचन सर्वीर गुणस्तत्र समासते सुरा, हरा भक्तस्य कुता महत्गुणा मनोरथेन असति भावति बहिः। जो भगवान की भक्त नहीं है इस प्रकार प्रशांत गुण को अर्जन नहीं कर सकता। ये ट्रांसलेशन होता है, अकिंचन भक्ति के द्वारा इस गुण को प्राप्त किया जाता है। तो परशुराम इतने क्रोध किए, हम कह सकते हैं भाई ये क्रोध जब भगवान के पास है तो उनका भक्तों का कैसे होगा। परशुराम सत्यावेश अवतार, ये भगवान कृष्ण व राम की तरह नहीं है, हमारे आराध्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण। हम परशुराम को सम्मान करते हैं वह उनकी कार्यों को हम प्रशंसा करते हैं, इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति को दंड देना चाहिए, वो तो दंड पाने के योग्य है। परंतु शास्त्र में कभी कभी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं है कि मैं कर रहा हूं मैं दंड दिया हूं, वो व्यक्ति इस प्रकार पाप करने के बावजूद भी उनको उस पाप की प्रायश्चित करना नहीं पड़ता है। जैसे अर्जुन, उन्होंने पूरा कौरव पक्षियों के सैन्य को सबको मार दिया, संहार किया, परंतु नरक नहीं देखना पड़ा उनको। इसलिए भगवान कहे जस्यानाहंकृत भाव बुद्धिर्जस्य नलिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निवत्यते। जीव पाप पुण्य में भागीदारी क्यों बनता है कि उनके अंदर ये इच्छा है कि मैं कर रहा हूं, कर्ता भावना है, इसलिए वो कर रहा है। परंतु जिसके मन में इस प्रकार अहंकार भाव नहीं है तो ये सारे ब्रह्मांड को जला करके राख कर दे। मतलब सोचे कि मैं तो राम की भक्त हूं, क्या परवाह है, जय श्री राम हनुमान जी उच्चारण किया और लंका को जला करके राख कर दी। क्या हुआ उनकी, वो केस ठुका कि भाई तुमको जाना पड़ेगा इस तारीख में, तुम लंका को जलाए हो, जानते हो रावण के राज्य को जलाए, परंतु कोई नहीं पकड़ा उनको, कोई फाइल नहीं डायरी। ऐसी जो शुद्ध भक्त जो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं वो कभी बंधन में नहीं फंसते हैं। न मे कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मे फले सुहा इति मं जो भी जाना कर्म भी अवध्यते। जो भगवान की स्थिति को जानता है और जो भगवान की स्थिति को जानकर के भगवान के लिए कार्य करता है वो भी नहीं फंसता है। इसलिए क्षेत्रियों को दंड देने का कारण परशुराम को भुगतना नहीं पड़ा, परंतु कार्तवीर जी अर्जुन उनको दंड देने के कारण उनको थोड़ा से पाप लगा, इस कारण उनको एक साल के लिए तीर्थ करना पड़ा। तो आज की यही जो शिक्षा है कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परशुराम ने इन क्षेत्रियों को माध्यम बना करके जो 21 बार ये पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिए, तो ये पृथ्वी के मंगल के लिए है। जगत अपगतम पापम, इसलिए सत्य को समझने के लिए पहला व्यक्ति को संसार को देखना चाहिए, संसार को देखकर कि सत्य को समझना चाहिए, समझ सत्य और समझ, और सत्य को समझने के बाद व्यक्ति को सरल बनना पड़ेगा, संयमित होना चाहिए। संयमित होने पर भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापन करना चाहिए और संबंध स्थापन करके व्यक्ति को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। संसार को देखो, गीता में भगवान कहते हैं दुख दोषानुदर्शनम, उसको समझना चाहिए। संसार को देखने का मतलब कि संसार को समझना चाहिए और इस संसार के अंदर क्या सत्य है इसको समझना चाहिए, सार क्या है और असार क्या है, क्योंकि हम लोग परिणाम को नहीं देखते हैं इसलिए आंख बंद कर देते हैं। बिल्ली सोचता है कि मैं आंख बंद करके दूध पी लो ना कोई कुछ नहीं होने वाला है, परंतु उसी समय पिटाई पड़ता है क्योंकि सिर फंस जाता है जब हांड का अंदर तो आंख बंद है। इस प्रकार व्यक्ति लोभ से उनका चेतना जब नष्ट हो जाता है तो परिणाम नहीं देखता है कि कर्म का परिणाम कितनी भयंकर है। यद्यपि न पश्यन्ति लोभ अपहत चेतस, रजगुणी लोग, क्योंकि मनुष्य ज्यादातर सब रजगुण से प्रभावित हैं, तो रजगुणी व्यक्ति पहले सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, इमीडिएट बेनिफिट, क्षिप्रम ही मनुष्य लोग है, सब लोग चाहते हमको तुरंत, जैसे कहते हैं ना अभी जो चटपटा फास्ट फूड है ना, अभी सब फास्ट फूड हो गया, जल्दी तुरंत घर में भी बनाना नहीं पड़ेगा, इतने समय वेट कौन करता है। और पत्नी भी बोल देती है कहाँ होटल में खा लो, ढाबा है खा लो। तो रजगुणी लोग चाहते हैं कि हमको जल्दी मिल जाए, कर्म की सिद्धि, लेकिन परिणाम नहीं जानते हैं कि पेट में जाने के बाद वो कितने पीड़ा करता है। तो व्यक्ति रजोगुणी व्यक्ति तुरंत सोचता है कि जतत अग्रे अमृतपमम परिणामे विसमीपम। तो रजोगुणी व्यक्ति को जो सुख मिलता है पहला पहल बहुत आह आनंद जीवन बहुत तृप्ति लगता है, परंतु इसके परिणाम क्या है? विसमीप, जहर की तरह काम करता। क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति परिणाम को नहीं देखता है, इसलिए मनुष्य को पहले दर्शन करना चाहिए, पहला दुख दर्शन फिर भगवत दर्शन। अपुनः भव दर्शनम। कुंती देवी ने स्तुति की कि प्रभु मुझे ऐसे बार बार विपत्ति में डालिए ताकि मैं संसार को समझ जाऊं कि दुखालय मश्वासतम विपदम संतुन शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। फिर तब आपकी मंदिर के पास प्रतीक विग्रह के सामने आकर के मैं सिर झुकाऊंगी, क्योंकि आप ही सत्य स्वरूप हैं और इस सत्य को समझने के लिए जानने के लिए व्यक्ति को सरल बनना पड़ेगा। हृदय बहुत कुटिलता से भरी हुई है, हम तो बाहर को बहुत सुंदर रूप में चेहरा सजाते हैं, हाँ साधु मां संत के रूप में, परंतु अंदर से कितनी कुटिलता है। जैसे रावण की तरह गेरुआ वस्त्र तो पहना था, परंतु सीता को हरण करने के उसको भोग करने की कितना इच्छा। और शुपन ने कहने बाहर तथा सती जी की लक्ष्मी जी जैसे चेहरा बना के आई थी, परंतु वो राक्षसिनी भाव थी कि मैं सीता को मार करके खा जाऊं फिर राम को भोग कर। तो भोग वासना ही यह डिफुलसिटी है, ये राक्षस प्रवृत्ति है। इसलिए व्यक्ति को सरल बनना चाहिए, सिंपल। चेहरा बदलने से कोई हमको रक्षा नहीं कर सकता काल के प्रभाव से। जैसे कहते हैं आजकल लोग का बाल जब सफेद हो जाता है तो काला कर देते हैं, तो कोई बाल काला कर देने से काल से नहीं बच सकता है। जमराज नहीं सोचेंगे यार देखो इसका बाल काला है मैं इसको छोड़ दूं, सिंबल दे देता है काल आकर के, देखो बाल सफेद हो गया। दशरथ जी जब देखे शीशा पर कि बाल कान के बाल सफेद हो रहा है, पुत्र को राज्य देकर के जंगल में जाकर के तपस्या करने के लिए निश्चित किए। लेकिन आज की दशरथ धर्मात्मा व्यक्ति क्या करते हैं, कहते नहीं लोग फिर मुझे सम्मान नहीं करेंगे तो बुढ़ा हो गया है, इसलिए बाल को काला कर देते हैं, आंख पर चश्मा लगा देते, दांत गिर जाते तो प्लास्टिक दांत लगा दिए। तो ऐसे प्रिटेंडिंग करने से भगवान नहीं मिलते हैं, और ऐसे प्रिटेंडर को ही भगवान दंड देते हैं। इसलिए भगवान के अवतार होता है दुष्टता। तो कलियुग में भगवान भी इस प्रकार दंड देने के लिए अस्त्र रूप में प्रकट हुए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो इस नाम के रूप में कहते भगवान ये अस्त्र को प्रयोग किए। ये सुदर्शन अस्त्र को तो प्रयोग करके जगाई माधाई को मार सकते थे, परंतु कहे नहीं मैं इसे अस्त्र दूंगा तो उनकी असुर प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, अंदर में छिपा हुआ बुरी आदत नष्ट हो जाए। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाई माधाई को उन्होंने अनुकंपा करके कहा कि ये अस्त्र लो अंदर के असुर को मारने के लिए। कौन सा अस्त्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द वे ऑफ वॉक एंड वे ऑफ टक। ये कृष्ण कथा है और ये हमारे जीवन की यात्रा है, आगे चलने की रास्ता है। ये सब दृष्टांत को देख करके उभयर अपनी दृष्टांत स्वयं अन्वय तत्वदर्शी थी। हम लोग ऐसे इतिहास में घटी हुई घटना को विचार करके अपने जीवन के रास्ता पर चलना चाहिए। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। किसकी कोई प्रश्न है? सब लोग व्यस्तता है प्रसाद पाने के लिए, पेट में चूहा उतर रहे हैं। यस सर, किंचन का अर्थ है सोना व धन। तो लोगों की धन क्या है? मनी, जो पेपर करेंसी कहते हैं। लोग सोचते हैं ये सबसे उत्कृष्ट धन है, मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी। तो जिसके पास इसे धन रहता है अभिमान होता है। मैं कहा ना दुर्योधन के पास ऐसे खजाना था, इसलिए कृष्ण की बातें को सुना नहीं ध्यान पूर्वक, क्योंकि सोचा मेरे पास बहुत धन है। राज्य वैभव ये उन्माद पैदा करता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत स्त्री भी रेधमान मदहपमान नवी अभिधातुंगे तुम अकिंचन गोचरा। तो वहां कुंती देवी कहती अकिंचन गोचरा। तो जिसकी ऐसे अभिमान नहीं है, कहते ना सिल्वर व गोल्ड स्पून लेकर के जो जन्म लिए, तो कभी कभी जब भगवत भक्त होते हैं तो वो फिर समझते हैं। जैसे हिजबुली ने श्रादा नाथ महाराज कहे कि आपका तो स्वरूप ये है कि आप बाल की 10,000 भाग से एक अंश हिस्सा है, और ये थाट बांट कितने समय तक रहता है। तो व्यक्ति जब इस पर पहुंच जाए कि मेरे पास वास्तविक कुछ नहीं है, मैं एकदम छोटे मिनट से और काल के प्रभाव से कैसे हमारी जीवन दिन पर दिन घटता है। मछलियों को पता नहीं होता है कि सरोवर के जल अभी घट रहा है, बारिश में तो भर गया पानी, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रहा है, पानी घट रहा है। लेकिन जब गर्मी आ जाता है तो मछली तड़पते हैं। यदि वो मछली को समझ आ जाता है कि गर्मी में हमको तड़पना पड़ेगा, तो पहले से व्यवस्था करते कहां भरा हुआ जल है जहां घटता नहीं। तो उसी प्रकार थोड़े से धन से लोग इतने घमंड, उनकी हृदय इतना अभिमान से भर जाता है कि दूसरे को दिखते नहीं, टेढ़ी नजर में दिखते हैं, मानो उनके आंख पर मोतियाबिंदु है। और सचमुच मोतियाबिंदु है ही, अभिमान का मोतियाबिंदु। लेकिन जो ऐसा ही हमेशा ही समझता है कि देखो मैं तो तुच्छ दास हूं। आजकल अंबरीश महाराज होना बहुत कठिन है, जो साढ़ा ऐश्वर्य के स्वामी सब प्रकार धन वैभव भरा हुआ था, परंतु अपने पत्नी के साथ जाकर की एक साल तक उन्होंने महा द्वादशी व्रत, द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत को पालन किया। और जजमान लोग तो यज्ञ करते थे, परंतु उनका मन भागवत में रहती था, और सभी प्रजाओं को अपने पुत्र के समान ही पालन करते थे। कहते ना जिसकी अंदर ऐसे प्रभु के प्रति समर्पण भाव है, उसको कहते अकिंचन। किंचन मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी धन वही है। सार्वभौम जी एक बार का कह रहे थे, कहते दुराश्रय और सदाश्रय। आगरा में एक घर में गए थे, धनी घर था, उनकी बुढ़िया, वो कहा कि अरे बाबा तुम आओ इधर देखो देखो। तो घर में लेके गए, बहुत अच्छा से सब देखते हैं ना, बड़े बड़े धनी लोगों का घर सजा हुआ था। कहता है कि ये हमारे गोपाल जी के घर रहे, सबको दिखाया ये गोपाल जी के बंगला है, सब कहा। कहता है गोपाल जी कहाँ हैं? कहता आओ ना गोपाल जी को देखते हैं। ये सब बताया कि ये सब गोपाल जी की हैं, गोपाल जी के लड्डू, गोपाल जी की वो भक्ति नहीं थी। लेकिन गोपाल जी को जब देखा है तो कहा ये सब उनका है, लेकिन वो मेरा है, ये मेरी है। तो जिसके यही भावना है कि कृष्ण ही मेरे धन है, जीवन है, तो वही अकिंचना है। और दुराश्रय का उदाहरण इस मीरा रोड में दे रहे थे, क्योंकि एक व्यक्ति था इधर कोई बम्बे में, सच्ची घटना है, कहता कि मैं भी उनको भक्त लोग बोले कि आओ सत्संग में आओ, क्यों घर में रहते हो, बस दुकान और मकान ये दोनों चीज देखते हो, दुकान से आते हो बस पत्नी के पास। और उनके पहले पत्नी शायद उनका डेथ हो गया था, इसलिए वो ही पत्नी की आराधना करती थी, करता था। इसलिए कहा कि हमारे घर में भक्ति चल रहा है, जब समय मिलेगा मैं आऊंगा मंदिर। तो उनकी पत्नी ने एक बार उनको बोली कि तुम दुकान से एक चप्पल लेके आओ, उनके पास बहुत चप्पल हैं, लेकिन उसकी साड़ी के साथ मैचिंग नहीं था, ग्रीन साड़ी के लिए उसका चप्पल नहीं था, तो इसलिए मैच करने के लिए वो कहे कि नीला वाला चप्पल लेके आना। लेकिन ये बेचारा भूल गया था। आजकल यही से भी देखा जाता है, अपने शरीर को सजाने के लिए सब कुछ मैच कर लेते हैं, लेकिन मन को मैच नहीं कर पाते हैं, मन डिस्टर्ब है। और वो व्यक्ति भूल गया और पत्नी ने उनके लिए भोजन के लिए सब व्यवस्था करी रखा है, तो बिना पूछा वो खाने के लिए बैठ गया। तो उनकी पत्नी ने आवाज दी, अरे तुम चप्पल लेके आए हो? तो वो कहता है कि अरे तो खाने दो पहले, मैं बताता हूं। कहते मुझे लेट हो रहा है, मुझे पार्टी जाना है। अरे बताओ लाए हो कि नहीं? उन्हें कहा मैं भूल गया। अरे भूल गए तुम? तो उनकी पत्नी ने थोड़ा से बोल दिए, अरे क्या तुम्हारी इतनी चप्पल है, फिर इतने जीत क्यों पकड़ते हैं? अरे मैं तुमको कहा था ना मेरी मैचिंग नहीं है चप्पल, तुम भूल गए। और उनकी पत्नी को इतने गुस्सा आया, वो कीचड़ लगा हुआ था चप्पल को लेकर के पीट दिया उनके पीठ पर। और वो व्यक्ति क्या करे, ये तो एकदम अपने पत्नी के भक्त हैं, श्रीमती की महारानी की आराधना करता है, तो तुरंत भोजन छोड़कर के भागा भागा गए दुकान में खरीद करने के लिए चप्पल। तो तुरंत बोला, अरे मुझे चप्पल दे दो, चप्पल दो मेरी पत्नी के लिए। तो कहा कि रुको थोड़ा। कहा नहीं नहीं, मेरी पत्नी जाने के लिए तैयार है, तो तुरंत। तो दुकानदार ने कहा नाप तो बताओ, कौन सा नाप? तो कहा अरे मैं तो भूल गया नाप लाना, नाप नहीं है तो इसे आप मैं चप्पल दूंगा। कह रहा घर लौट करके जाऊंगा तो फिर दूसरे फिर बच जाएगा। अरे मेरी पीठ पर है वो नाप, आप नाप लो। तो देखिए कहते दुराश्रया जा बही आत्मानी, तो ऐसी स्थिति है लोगों की। तो अकिंचना भक्ति क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरे।